सिद्धेभ्यः ओम ज्ञानशक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಸಾರ್ ಮೇ ಭಟಕ್ತಿ ಹುಯಿ ಸಂಸಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋ वह यदि भव्यत्व पारिणामिक भाव को धारण करने वाला होता है तो अवश्य वह आत्म तत्व रुचि को प्राप्त कर सकता है। आत्मा एक तत्व है जो जीव तत्व के अंतर्गत ही माना गया है, क्योंकि जीव अलग नहीं है और आत्मा अलग नहीं है। आत्मा अपने को जाने, अपने को पहचाने, अपने स्वरूप को समझकर अपनी स्वरूप की ओर लौटे, लौट करके अपनी निधि को पहचाने, यह प्रयास सतत आत्मा के द्वारा होते रहना चाहिए और इसके लिए बाहर से बहुत कुछ निष्प्रह वृत्ति को धारण करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा चाहे भव्य हो चाहे अभव्य, संस्कार इसके ऊपर ऐसे पड़े रहते हैं। ये अनादि संस्कार डिस्चार्ज नहीं होते, को डिस्चार्ज करके देवशास्त्र गुरु के संगति से जो यथार्थ मार्ग, यथार्थ तत्व, यथार्थ आत्मगुणों की उपलब्धि होती है, उसके प्रति सदा ही समर्पित रहना आवश्यक होता है। कैसा समर्पण? कि ये आयतन हैं और मैं स्वयं भी उनके जैसे आयतन के रूप में कन्वर्ट हो सकता हूँ, मेरे लिए जो अनायतन हैं वे अनायतन मेरे आत्मा में संस्कार नहीं ला पाए, मेरे लिए कोई अपनी पहचान, आत्मा की पहचान करा नहीं पाए, क्योंकि वे राग से सहित हैं और मैं भी राग से सहित हूँ, वो भी रागी और मैं भी रागी, उनके संगति से रहते रहते राग का ही पोषण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लिए जब तक मैं राग और रागी का संगति को नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता, तब तक मैं आयतन नहीं बन सकता। आयतन बनना हमारा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य आयतन बनना। ऐसा तो नहीं है जीवन यापन कर रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, कहीं भी उठ रहे हैं, आत्मकल्याण का लक्ष्य नहीं है तो फिर आयतन की ओर आकर्षित नहीं माना जाता। आयतन क्योंकि वीतराग होते हैं, वे हमारे राग को समाप्त कर सकते हैं, हमारे संस्कार को धो सकते हैं। यहाँ पूर्व के संस्कारों को धोना और नए संस्कारों को प्रतिष्ठित करना, यह प्रत्येक का लक्ष्य होता है, भव्यात्मा का। ऐसे भव्यात्मा को भव्य क्यों कहा? यह धो सकता है और नए संस्कारों को प्रतिष्ठित कर सकता है, इसलिए यह भव्य है। और उस जीव को अभव्य क्यों कहा? वो पूर्व के संस्कारों को धोने में सक्षम नहीं है, ये उसका निसर्ग नियम है। निसर्ग से ही यह अभव्य है। अभव्य यदि ये कहता है कि मैं आयतन नहीं बन सकता और आयतन के छाप को, संस्कार को मेरे ऊपर डाल नहीं सकता, ये ठीक है। अभव्य यदि कहता है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु भव्य ही ऐसा कहने लग जाए तो उसकी वह कमजोरी है, शक्तिहीनता है। कोल्हापुर का पहलवान ही कहे कि मैं शक्तिहीन हूं, वे हम बाहर को क्या कहेंगे? अपन भव्यत्व गुण को अनादि से धारण कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम बहुत सक्षम हैं, हम हर कार्य को कर सकते हैं, अपने पास यह एक योग्यता है। अभव से तो हम कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बेचारा भव्य, वो भव्य बनना चाहे, कोई दूसरा भव्य बनाने का प्रयत्न भी करे तो भी भव्य बनने की क्षमता उसके पास नहीं है, कैसे कौन बना सकता है? कोई बना नहीं सकता। और भव्य को भी अभव्य कौन बना सकता है? वो भी पारिणामिक भाव है, उसको भी कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये सब विचार करके भव्य जीव को साहस करना चाहिए। क्या साहस करना? निष्प्रहता से रहना, ये बहुत आवश्यक है। अगर निष्प्रहता नहीं आई तो हमारे संस्कार ही हमारे लिए हानिकारक बन जाते हैं। पूर्व संस्कार से अज्ञानवश यह आत्मा अनुरागी हो सकता है, किंतु उन संस्कारों से अनुराग नहीं रखना ही मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाना है। मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाने के लिए संस्कारों को वह तोड़ना चाहता है, प्रबल इच्छा को धारण करता है कि मुझे ये तोड़ना है, छोड़ना है, छूटना है, छटपटाता रहता है। ऐसे भव्य जीवात्मा यदि वह आत्म कल्याण के लिए समर्पित ही है तो किसी से वह प्रभावित भी नहीं होता और कहीं अटकता भी नहीं। अटकने के लिए प्रभावित होना सर्वप्रथम का लक्षण होता है। हम अटकते क्यों हैं? प्रभावित हो जाते। और ठीक है, प्रभावित होना आवश्यक ही है, प्रभावित होना ये लक्षण बहुत अच्छा है, लेकिन किस से? आयतन से क्या अनायतन से? आयतन से। आयतन से प्रभावित होना और अनायतन से निष्प्रह रहना, ये भव्य जीवात्मा को ये शक्ति जगानी चाहिए। इसी शक्ति का नाम श्रद्धा गुण है। इसी शक्ति का नाम श्रद्धा गुण। श्रद्धा, आयतनों के प्रति श्रद्धा। इस श्रद्धा गुण को कौन जगा रहा है? ज्ञान जगा रहा है। भव्यात्मा का ज्ञान श्रद्धा गुण को जगा रहा है, और श्रद्धा गुण को जगा करके वह कौन सा गुण प्राप्त करना चाहता है? सम्यक्त्व गुण को प्राप्त करना चाहता है। श्रद्धा गुण सम्यक्त्व गुण को पाने का साधन हुआ। इस साधन के माध्यम से धीरे धीरे भले ही आगे बढ़ जाए, परंतु सबसे पहला प्रभावित न होना और वहां न अटकना, ये आवश्यक है ना? आवश्यक ही। ऐसा विचार करना चाहिए, ये एक शिक्षा की बात है, एक संदेश है। किस तरफ से? अपने तरफ से। एक संदेश दूं? अपने तरफ से ये एक संदेश है। कैसा संदेश? आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए या चारित्र प्राप्त करने के लिए, प्रतिमा धारण करने के लिए, महाव्रतों को धारण करने के लिए जब मन बना लेते हैं, इनमें से कोई एक को प्राप्त करने के लिए जब मन बना लेते हैं, तो ये मन बन जाना भी बहुत आपका पूर्व का कोई भाग्य है, तभी यह मन बन गया है। अन्यथा ऐसा सब किसी का नहीं बनता है। आपको क्या करना है? हमको तो पाना है, हमारी इच्छा तो प्रबल हो गई है। हमको तो उस शक्ति को पाना, जिस शक्ति को हमने अनादिकाल से नहीं पाया है। तो हमारे सारे गुण सोए हुए हैं, एक भी गुण जागृत नहीं है अनंत गुणों में से। आत्मा में अनंत गुण मानेंगे कि नहीं? उसमें से कौन सा जागरण कर रहा है बोलो? सम्यक तो जागृत है क्या? नहीं है। अनादिकाल से तो ये नहीं रहा, सम्यक तो जागृत नहीं है। श्रद्धा गुण भी जागृत है क्या? फिर नहीं है। श्रद्धा गुण जागृत होता तो सम्यक तो गुण भी कभी प्राप्त हो गया होता, वो भी नहीं है। और श्रद्धा और सम्यक तो ये दोनों गुण में से श्रद्धा गुण ही प्रमुख है। ये ऐसा प्रमुख द्वार है जिस द्वार के खुलने पर, अनंत 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 गुण हमारे लिए उनका दर्शन होता है। ये प्रथम द्वार है। जैसे नगर का द्वार होता है ना, प्रथम द्वार, उसको कन्नड़ में क्या बोलते? अगसी बागल, प्रवेश द्वार। नगर का प्रवेश द्वार, किला का प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार जैसा है। कौन सा गुण? श्रद्धा गुण। श्रद्धा यही गुण जग नहीं पाता, श्रद्धा गुण ही जग नहीं पाता। हम जगा नहीं पाते, भव्य होकर के भी जगा नहीं पाते। आखिर इसमें कौन सा रहस्य है जो हम जगा नहीं पाते? उसका भी विचार करना आवश्यक है। ऐसी कोई कौन सी त्रुटि हो रही है? हमारे पास ऐसा कौन सा वीकनेस है जिसके कारण से हम जगा नहीं पाए? तो इस संबंध में हमारा एक संदेश सुनो, नया संदेश। रोज एक नया मिलना ही चाहिए। आप धर्म धारण करते समय अपने को अकेले नहीं बनाते, ये संदेश है। देखो, विचार करेंगे इस पर? अकेले नहीं बन पाते, किसी न किसी को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? पूर्व को जोड़ते हैं, या तो वर्तमान को जोड़ते हैं। पूर्व को जोड़ते हैं तो पूर्व के संस्कारों को जोड़ देते हैं, अकेले नहीं बन पाए। या तो पूर्व के लोगों को जोड़ देते हैं तो भी संस्कार नहीं बन पाएंगे। मैं अकेला कैसा जाऊं? डर लग रहा है? जब आप तैरना सीखते हैं तो सिखाने वाले सिखा सकते हैं। तैरना सीखना है तो अपने शरीर में कोई अन्य साधन भी हम जुटा सकते हैं। कोई लोग फुग्गा जुटाते, फुग्गा वो गोल गोल फुग्गा रहते ना, बांध लेते। कोई थर्माकोल बांध लेते, कोई अन्य चीज बांध लेते। ये कुछ भी नहीं बांधते हैं तो जो सिखाने वाला है उनको बुला लेते, हमको सीखना है और जरा हमको हाथ पकड़ो। ने के लिए जब हम तैयार होते हैं तो हाथ छोड़ने तक वो आवश्यक है। हाथ छोड़ने के बाद तो अकेले होना पड़ेगा ना। हाथ छोड़ने के बाद तो आपको ही सीखना है। तो एक बार सिखाया, दो बार सिखाया, तीन बार सिखाया, अब वो सिखाने वाला भी देख रहा है आपको कि इसको आ जाएगा, इसको आ जाएगा, ये कह करके हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ दिया तो आपका कर्तव्य था कि हाथ भी मारो और पांव भी मारो। हाथ मार रहे हैं और पांव मारना भूल गए तो भी नहीं जमने वाला, और पांव मार रहे हैं और हाथ बंद हो गए तो भी नहीं जमने वाला। हाथ पांव चारों काम करना चाहिए। तो जब अपन तैरने की कला सीखते समय कुछ आ गया है हमारे लिए, ऐसा समझ में आया, अब तैर सकता हूं, ऐसा भरोसा आया, तो उस वक्त सहारा छोड़ देना चाहिए ना। छूटता ही है सहारा, सहारा छूटता ही है। सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय आप अकेले थे, पंच लब्धियों में, करण लब्धियों में अकेले थे कि कोई और दूसरा भी था? आप स्वतंत्र थे, अकेले थे, आप अपने उपादान के माध्यम से डूब गए थे। आपका स्वयं का ही केवल एक उपादान जागृत था, बाहर का सारा सहारा आपने छोड़ दिया। बाह्य निमित्त आवश्यक है, ठीक है, लेकिन योग्य बाह्य निमित्त आवश्यक है। उसी योग्य बाह्य निमित्त का नाम है आयतन। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, सच्चा धर्म, सच्चे धर्म के उपासक इत्यादि, ये जो छह बनते हैं ये आयतन के नाम हैं। ये तैरने के लिए सिखाने की क्षमता इनमें है। आयतन के पास तैरने के लिए सिखाने की क्षमता है। तैरना किसको है? हमको, हमको तैरना है। तो तैरने की तीव्र जिज्ञासा वाला अकेला बन जाता है, बाहर से भी और अंतरंग से भी। बाहर से अकेला कैसा बनता है? वह अनायतनों के बीच रहता हुआ भी ऐसी शक्ति को जुटा लेता है कि मेरा इसमें से कोई अपना एक भी नहीं है, ऐसा चिंतन आता है उसको। इस बीच में मैं अकेला ही हूं, मेरे आसपास में मेरा एक कोई भी नहीं है, क्योंकि एक भी आयतन नहीं। जिसको देखो उसको हमको लेकर के ही पानी में जाना चाहता है और हम तैरना जानते नहीं। इनका सहारा अनादिकाल से हमने लिया है, बस बहुत हो गया, क्या और थोड़ा लेना है? लेना हो तो ले लो, लेकिन एक बार तो उसको बस हो गया ऐसा कहना ही पड़ेगा। बहुत समय हो गया, इससे कुछ पाना चाहता था नहीं मिला, इसमें कुछ सीखना चाहता था नहीं मिला, सीखने को भी नहीं मिला, पाने को भी नहीं मिला, एक दिन जाकर के अकेला होना पड़ेगा। मैं अकेला हूं, अनायतनों के समुद्र में मैं अकेला हूं, और मेरा उपादान मेरे पास है, इसको मुझे ही जगाना पड़ेगा। बच्चा रोते समय अकेला रोता है कि किसी को साथ लेकर के रोता है? अकेला रोता है, क्योंकि सुख भी अकेले को मिलता है, दुख भी अकेलों को मिलता है। हम सुखी भी होते समय अकेले होते हैं, दुखी होते समय भी अकेले होते हैं। जो अपने आप को अकेला बनाना सीख लेता है ना, वो समर्थ भव्य जीवात्मा सम्यक दर्शन आदि चारित्र आदि गुणों को पाने में सक्षम होता है। ये संदेश नया है? नहीं, पुराना ही है, लेकिन है तो नया। एक प्रयोग की बात है, प्रयोग करके देखना है। है तो पुराना, लेकिन पहली बार ये सुना रहे हैं इसलिए नया लग रहा है। है तो पुराना। अनायतनों के समुद्र के बीच तैर करके तट पर लगना है, और वो समुद्र है, संसार एक विशाल समुद्र है, उसमें आयतन बहुत कम है, अनायतन तट से लेकर दूसरे तट तक अनायतन ही अनायतन बिछे हुए हैं। उसमें आप हैं भव्य जीवात्मा, आप अपने आप को जगाना चाहते हैं, तो जगाने का उपाय क्या है? अपने आप को अकेला बनाना। मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं। अकेला होने का साहस जिसको होता है वही धर्म को धारण कर सकता है। ये कठिन है कि सरल है? जिसको ये सरल हो जाए तो जल्दी पाएगा, जिसको कठिन है तो ओर छोर तो समुद्र का अनंत है। कठिन है तो कठिन ही बन करके रहेगा। सम्यक दर्शन क्या वस्तु है? सम्यक दर्शन क्या चीज है? संयम क्या चीज है? अकेले में, अकेला होकर अकेले में ही पाने की वस्तु है। धारण करते समय कोई अपने पास नहीं रहता, बाह्य निमित्त तब तक सहायक है जब तक वो उपादान को जगाता नहीं। बाह्य निमित्त उपादान को जगा करके छोड़ देता है, बस उतना ही उसका काम है। उपादान आपका जग गया ना, तो आप अकेले बन जाते हैं। इसके लिए वीतरागी भगवान का दर्शन, वीतरागी गुरुओं का दर्शन, वीतरागी शास्त्रों का अध्ययन करने को कहा। ये बाह्य माध्यम है, उपादान को जगाकर ये तीनों हमारे लिए छोड़ देते हैं, सक्षम बना करके, यानी अकेले बना करके छोड़ देते हैं। देव शास्त्र गुरु ये क्या कहते हैं? तुम अकेले हो जाओ, समुद्र में हो तो मेरा यहां पर कोई एक भी नहीं है, मेरे तो तीन ही हैं, देव शास्त्र गुरु, और वो भी नहीं मिलते हैं तो भी आपको अपना रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। हमारे आसपास में माहौल में कोई देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं है तो भी विचार तो अपने को ही करना पड़ेगा। मान लो हमारे पास शास्त्र नहीं है, गुरु तो हमेशा मिलते नहीं, भगवान भी हमेशा नहीं मिल पाते, भगवान का प्रतिरूप प्रतिमा मिलती है, प्रतिमा का दर्शन करते करते भी दर्शन होता है, सम्यक दर्शन। तो आप विदेश में हैं और वहां मंदिर तक नहीं है, और आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, क्या करेंगे? सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, आप भव्य यदि हैं हो सकता है, और अभव्य हो तो समो शरण के निकट भगवान के सामने बैठे हैं तो भी नहीं होगा। ये तीन निमित्त अभव्य के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते। अभव्य के उपादान को जगा ही नहीं सकते ये तीनों आयतन। क्यों? अभव्य में उपादान ही नहीं है तो उपादान को क्या जगाएंगे? अभव्य के पास उपादान होता है? अभव्य के पास सम्यक दर्शन पाने का उपादान, आंतरिक शक्ति को उपादान शक्ति कहते हैं, वो होता है क्या? नहीं होता है। अभव्य को ज्यादा से ज्यादा चार लब्धि तक वो जाता है, वो भी लौकिक कामना को छोड़ नहीं सकता, उसको देह में रख करके ही बढ़ता है वो, यानी अंतानुबंधी कषाय का मंदोदय होने से चार लब्धि तक पहुंच जाता है, पर वहां पर जाकर जहां करण लब्धि में पहुंचना है वहां के लिए सम्यक उपादान शक्ति आवश्यक है। वो सम्यक उपादान शक्ति उसके पास जागृत नहीं हो सकती, उसके अंदर जागृत नहीं हो सकती, और वो लौट जाता है, चार तक जाता है लौट जाता है, भव्य आगे बढ़ सकता है। भव्य के लिए देशना लब्धि मिली थी, उसी के बल पर आगे बढ़ रहा है, और भव्य भी देखो परमार्थ को ही दृष्टि में रखकर, सम्यक दर्शन पाना है, मोक्ष जाना है, आत्म कल्याण करना है, ये बातें अगर लक्ष्य में है तो अवश्य वह पंचम लब्धि में प्रवेश करेगा। उसके पहले तक आपकी दृष्टि लक्ष्य इत्यादि ये गलत भी हैं तो चार लब्धि प्रकट हो सकती है, क्षोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि, ये चार लब्धियां प्रकट हो सकती है। अभव्य को हो रहा है तो फिर भव्य को क्या? भव्य को भी चार लब्धियां लक्ष्य के बिना, यानी परमार्थ लक्ष्य के बिना प्रकट हो सकेंगी, किंतु अंततः उसको लौटना पड़ेगा। यदि लक्ष्य गलत है तो लौटना पड़ेगा, लक्ष्य सही है तो आगे बढ़ सकता है। अब विशुद्धि की आवश्यकता है, परमार्थ का लक्ष्य बन गया और विशुद्धि कम पड़ गई तो भी लौट सकता है परमार्थ में लक्ष्य, उपादान जगाने की शक्ति भी है, लेकिन विशुद्धि की कमी आ गई तो भी पंचम लब्धि में प्रवेश नहीं करता। विशुद्धि कम पड़ जाती है तो चार तक जा करके वो भी लौट सकता है। ऐसा हम नियम नहीं बना सकते कि ये भव्य है तो ये चार लब्धि को पा लिया है तो पंचम लब्धि को अवश्य यह पाएगा ही पाएगा, ऐसा नियम नहीं बना सकते। अभव्य जीव जैसा लौटता है वैसे भव्य जीव भी लौट सकता है, पर इतना अंतर है भव्य अभव में, अभव्य लौटता ही है, भव्य लौट भी सकता है और नहीं भी लौटता है, ये दोनों है। इतनी बाती हो गई, क्या करना है अपने को? अकेले बनना है, अकेला, मैं अकेला हूं। आपको हम ध्यान करा रहे हैं तो ध्यान कराते समय उपासना, वो क्या बोलते उसको, विपश्यना, विपश्यना, अन्य शिविरों में विपश्यना सिखाते हैं ना, वहां क्या होता है, ध्यान कराते हैं, ध्यान कराते समय केवल वचनों का सहारा दिया जाता है, कैसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा बैठना है, ऐसा सोचना है, ऐसा सोचना है, विपश्यना की बातों को सुन करके आप अकेले हो जाते हैं कि उनको भी साथ साथ ले जाते हैं, वहां तक तो साथ रहते हैं और वो भी मौन हो जाते हैं, आप भी मौन हो जाते हैं, जब आप डूबते हैं अकेले रहते हैं क्या? नहीं, कि वो भी साथ में रहता है। कार्य सिद्धि के काल में, कार्य सिद्धि के काल में हम अकेले ही रहते हैं, सहारा छोड़ देते हैं हम। जब सम्यक दर्शन प्राप्ति ही हो रहा है, विशुद्धि हो रहे, तो विशुद्धि के काल में सामने कोई बचता नहीं, हम अपने आप में डूब जाते। तुम्हारा भगवान के सामने खड़े होकर के जब दर्शन करते रहते हैं, उसी समय पांच लब्धियां बनती हैं, और भगवान ही तो हमको प्राप्त कराते हैं, कराते अवश्य, करने में, प्राप्त करने में वो निमित्त अवश्य है। जब कार्य सिद्धि हो रही थी, उस समय उपादान प्रबल होने के बाद उसी उपादान के माध्यम से कार्य सिद्धि हुई ना। उपादान का जो अंतिम समय है, अंतरंग निमित्त उपादान है, उपादान का जो अंतिम समय है, अंतिम समय तक भी बाह्य निमित्त भगवान प्रतिमा इत्यादि का सहारा था क्या? दोनों नहीं थे, एक था। अंतरंग निमित्त रह जाता है, बहिरंग निमित्त तो अंतरंग को जगाकर दूर हो जाता है, अंतरंग निमित्त को, उपादान को जगाकर वो दूर हो जाता है। तैरना तो आ गया है किंतु डर रहा है, बच्चा डर रहा है। तैरना तो आपने सिखा दिया है लेकिन फिर भी डर लग रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको उठा करके फेंक देते हैं पानी में। वो तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है? नहीं मर सकता, नहीं डूब सकता। तो बच्चे को सक्षम बना करके जैसे पानी में पटक दिया जाता है, वैसे देव शास्त्र गुरु आपको सक्षम बना करके अकेले में कर देते हैं। तुम अकेले हो, अब हम नहीं आएंगे, फिर भी डर लग रहा हो तो एक बार साहस के साथ कूदना है, साहस के साथ कूदना है। तो साहस के साथ कूद लिया तो उपादान सिद्ध हो गया, उपादान जागृत ही है, अब आप डूब नहीं सकते, उपादान निश्चित जागृत है। अकेलापन आ जाता है उपादान शक्ति जागृत होने के उपरांत। स्वागत करना है हर चीज के लिए, कोई भी धार्मिक कार्य करे, स्वाध्याय करे, सम्यक दर्शन प्राप्त करे, संयम करे, कुछ भी करे, अकेले को ही सोचना चाहिए कि मैं ही करूं। धर्म के क्षेत्र में अकेला होना चाहिए। हम संसार के प्रत्येक क्षेत्र में सुख दुख आदि अकेले में ही भोगते हैं, पर जो दुख दे रहा है वो दुख दे करके चला जाता है। दुख का अनुभव करते समय हम क्या होते हैं? अकेले होते हैं कि कोई रहता है? अकेले रहते। तो अनायतनों से निष्प्रह होने की कला सिखाते हैं देव शास्त्र गुरु। आयतन, आयतन सिखाते, ये बाह्य निमित्त हैं हमारे लिए, बहुत बड़े वो नहीं हैं कि इन्हीं से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन तो आपको अपने उपादान से प्राप्त होने वाला है, पर उपादान की जागृति के लिए इनकी जरूरत है, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की। ऐसा यह रहस्य है। इस रहस्य को समझकर अपने को अकेलेपन में जीने की कला सीखना चाहिए। तीन मूर्ता का स्वरूप समझना है। लोक मूर्ता दोष, लोक में प्रचलित मिथ्या मान्यताओं को मान्य करना, अज्ञान अवस्था में होता है ये। उपादान जागृत होने के बाद तो नहीं हो सकता, उपादान जब सोया हुआ रहता है तब यह हो सकता है दोष। कैसा दोष है? लोक में प्रचलित मिथ्या मान्यता, बहुत सारी होती हैं मिथ्या मान्यताएं, बहुत जगह होती है, और बहुत लोग मानते हैं उसको, उसको विचार ही केवल करना है कि लोग ऐसा मानते हैं तो एक सही है क्या गलत है, ऐसा प्रश्न उठा करके यदि हम देवशास्त्र गुरु के वचनों के सहारा लेकर उसकी तुलना करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आता है भगवान की वाणी तो ये बोलती है और लोग जो कर रहे हैं या कह रहे हैं वो ये इस प्रकार का है, तो इसमें सही कौन? तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि देव के वचन ही सही हैं और ये वचन सही कदापि नहीं हो सकते, त्याग देना चाहिए। ये लोकमूर्ता के विषय एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं। जैसे पेड़ की प्रदक्षिणा लगाते हैं और उससे कुछ मान्यता बना लेते हैं, क्या मान्यता जो भी है उसके पीछे वो मान्यता बना लेते हैं, तो वो मान्यता सत्य है क्या? सत्य नहीं होती है, इसलिए उसको त्याग देना चाहिए। जो जो मान्यता असत्य है उसको तुरंत, समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत तुरंत त्याग दिया तो उपादान जागृत है ये समझना, और तुरंत त्याग नहीं पा रहे हैं तो अभी उपादान सोया हुआ है ये समझना, अभी उपादान सोया हुआ है। उपादान को आप ही जगा सकते हैं, ये उठ जा, देवशास्त्र गुरु आ गए हैं बाहर, कब तक सोएगा अभी, ऐसा कहना पड़ेगा उसको। और वो कौन है? ज्ञान ही है और कोई नहीं, ज्ञान ही है वो, भीतर चेतना शक्ति, ज्ञान की शक्ति। जाग जा, अकेला हो जा, सुख पाने का अवसर आया है, उस तुरंत जगाना चाहिए उसको, जग सकता है। अपने को ये इसलिए मालूम नहीं था कि अपन क्या है और अंदर किसको जगाना है, ये भी मालूम नहीं था ना पहले, ज्ञान है और वो सब कुछ काम कर सकता है, जग सकता है, ये मालूम नहीं था पहले, अब मालूम पड़ गया है तो उसी को तो जगाना है। चाहे चारित्र ले लो, चाहे सम्यक्त्व ले लो, चाहे ज्ञान बढ़ा लो, चाहे कोई साहस का काम करो धर्म का, उस सब में किसको जगाना है? ज्ञान को ही जगाना है। किसको समझाना है? ज्ञान को ही समझाना है। हे ज्ञान, सो मत, अज्ञान में उलझे हुए कब तक सोते रहोगे? जगो, उठो, खड़े हो जाओ, पाओ, अकेले बन जाओ, अकेला करना ज्ञान को, अकेला करना निष्प्रह बनाना अपने आप को, और धर्म की आराधना करना, सम्यक्त्व की आराधना, ज्ञान की आराधना, चारित्र की आराधना। आयतन भी तीन, मुख्य आयतन तीन, देव शास्त्र गुरु, और रत्नत्रय भी तीन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिनको हम आयतन कहते हैं वो देव शास्त्र गुरु हैं बाहर के। कि किस उद्देश्य हैं? अपने तीन को जगाने के लिए, रत्नत्रय को जगाने के लिए। रत्नत्रय तो अंतरंग आयतन है, देवशास्त्र गुरु तो बहिरंग आयतन है। बहिरंग आयतन के माध्यम से अंतरंग आयतन को हम जगाने जा रहे हैं। और दूसरी बात, देव शास्त्र गुरु को आयतन यह संज्ञा क्यों है? नी तीन के कारण से तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होने से ही तो वो आयतन कहलाते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र होने से वो स्वयं आयतन है, और स्वयं आयतन है तो आयतन की अनुभूति उनको है, वो अनुभव से बोलते, सम्यक दर्शन को अनुभव से बोलते हैं, सम्यक ज्ञान को अनुभव से बोलते हैं और सम्यक चारित्र को अनुभव से बोलते हैं, इसलिए आयतन है। और जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये धर्म, ये अंतरंग आयतन जिनमें नहीं है, वो इन संबंध में, इन तीनों के संबंध में अनुभव से क्या बोलेंगे? वो भी बोलेंगे, अनुभव से ही बोलेंगे, लेकिन इन तीनों के संबंध में नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों के संबंध में अनुभव से जरा भी नहीं बोल सकेंगे, वो बता सकेंगे कुछ भी। हाँ, प्रश्न अलग हो जाएगा, विषय के अंतर्गत नहीं होगा, जरा बाद में पूछना अकेले में। क्या बता रहे हम? अंतरंग शक्ति तीन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों अंतरंग आयतन है। इनका अनुभव से बोलने वाले कौन? जो आयतन है, देव, शास्त्र, गुरु। और इनका अनुभव से बिल्कुल नहीं बोल पाते वो कौन? अनायतन। तीन, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र। तो उनके पास कौन सी चीज है जो अनुभव से बोल सकते हैं? अंतरंग। तीन उनके पास भी होना ही चाहिए, इसके विरुद्ध। हाँ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों के संबंध में अनुभव से ही बोलेंगे ना वो? जिसका जो अनुभव कर रहा है उसी संबंध में वह वैसा ही बोलता है। ये जीवात्मा का साहजिक प्रवृत्ति है, सहज प्रवृत्ति है, जिसके पास जो है उसी को बोलता है। डॉक्टर है तो इंजीनियर की बातें कभी नहीं करता हो, इंजीनियर है तो डॉक्टर की बातें उसको जरा भी मालूम नहीं है। तो जिसके पास जो चीज होती है उसको अनुभव से ही बोलता है। देव, शास्त्र, गुरु, ये तीनों रत्नत्रय के संबंध में अनुभव से बोलते हैं, क्योंकि वो चीज उनके पास है इसलिए। और जिनके पास ये तीन हो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, उनके संबंध में वो भी अनुभव से बोलते हैं। तो ये जो लोक मूढ़ता है, ये लोक मूढ़ता किधर से इसका जन्म हुआ? अनायतनों से जन्म हुआ क्या आयतनों से जन्म हुआ? हाँ, वो भी अनुभव से ही बोले हैं कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा आपको। उस पेड़ का तीन धागा बांधकर सात चक्कर लगाओ और एक लोटा पानी डाल दो तो ऐसा बन हो जाएगा आपको, वो कौन सा अनुभव है? वो तीनों अंतरंग अनायतन हैं, और उन अंतरंग अनायतन को धारण करने वाले वो तीन। अनायतन को अंतरंग अलग मानना चाहिए और बहिरंग अलग मानना चाहिए। अंतरंग अनायतन कितने? तीन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और सम्यक अनायतन कितने? तीन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीन अंतरंग अनायतन, अंतरंग अनायतन, अंतरंग आयतन को धर्म कहते हैं। और उस धर्म रूपी आयतन को जिसने धारण कर लिया है, ऐसे आत्माओं को बहिरंग आयतन कहते हैं। हमारे लिए वो बहिरंग हो गए, लेकिन उनके धर्म उनके लिए अंतरंग हैं। उनके तीनों वो धर्म अंतरंग हैं। अंतरंग धर्म को धारण करने से वे आयतन के रूप में कन्वर्ट हो गए, और वो आयतन हमारे लिए आयतन है। और उनकी वाणी को हम क्यों सुनते हैं? अपने अनायतनों को, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को, अपने अनायतन को आयतन में कन्वर्ट करने के लिए उनकी वाणी को सुनते हैं। तो वाणी को सुनते 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 हमारा अधर्म धर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन के रूप में, सम्यक्त्व के रूप में, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट होता है, और मिथ्या चारित्र सम्यक चारित्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो लोक मूढ़ता का भी तो उपदेश हुआ है, कहीं न कहीं से है ये, स्रोत इसका क्या है? अनायतनों ही, अनायतनों के माध्यम से उपदेश हुआ और वो लोक में प्रचलित हुआ, मान्यताएं बन गई। तो जो जीव उसमें अकेले नहीं थे उनकी मान्यता बन गई, और जो अकेले हो चुके थे या अकेले हो रहे थे या अकेले होने को राजी थे उनको ये छू नहीं सके। लोक मूर्ताएं है, हाँ वो परीक्षा करेगी, अकेला जो होता है ना वही परीक्षा कर सकता है, अकेला ही व्यक्ति ही परीक्षा कर सकता है अकेला होने पर। हम दूसरे पर डिपेंड है तो परीक्षक नहीं बन पाएंगे। वो क्या सोचता है, मेंटलिटी कैसी रहती है, मुझे तो इसके बिना तो रहना नहीं होता है, इसको बिना छोड़ करके तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा इनको चाहिए ये। बहुत कमजोरी रहती है अंदर, उस कमजोरी को हटाना। हाँ आत्मा में कैसी कैसी कमजोरियां हैं, ये कमजोरियां हमारे श्रद्धा गुण को सुलाई हुई है, जगाने नहीं देते। ऐसा चिंतन करना चाहिए, चिंतन करते करते आपको हो जाएगा, वो अकेलापन आ जाएगा। परमात्मा कभी भी शुरू से लेकर अंत तक अकेला ही रहता है। देखो श्रद्धा गुण को पाया, ये धर्म का पहला द्वार है, फिर सम्यक तो पाया दूसरा द्वार, फिर उसके साथ सम्यक ज्ञान भी आया तीसरा द्वार, चारित्र भी पाया चौथा द्वार, फिर पाता ही गया औपशमिक चारित्र, क्षायिक चारित्र, यथा क्या चारित्र, फिर पाता है केवल ज्ञान, फिर सिद्ध भगवान। वत्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो शुद्ध स्वरूप है वह धर्म है, वो उनमें है, शुद्धों में। तो वहां पर भी तो धर्म है, आयतन है, उनका आयतन क्या? वस्तु का शुद्ध स्वरूप अंतरंग आयतन, और सिद्ध परमेष्टि की जो आत्मा है वो बहिरंग आयतन हमारे लिए। उनका अंतरंग शुद्ध वस्तु का शुद्धत्व वो अंतरंग आयतन है हमारे लिए, और आत्मा वो भी आयतन बन गई, क्योंकि शुद्ध स्वभाव को धारण करने वाला है इसलिए ही हमारे लिए आत्मा भी आयतन हो गया। जीव भी आयतन और जीव का धर्म भी हमारे लिए आयतन, आत्मा भी आयतन, सिद्ध भगवान का आत्मा वो भी आयतन, और आत्मा का जो धर्म है वो भी आयतन। असल में सिद्ध भगवान आयतन बाद में है, पहला तो उनका धर्म हमारे लिए आयतन है, उनके गुण हमारे लिए आयतन है, उनकी शक्तियां समीचीन शक्तियां सम्यक शक्तियां वो हमारे लिए आयतन है। सिद्ध भगवान बाद में आयतन है, सिद्ध भगवान मने आत्मा, और उनके पास जो उनको आयतन बनाने वाला साधन है वो शक्ति है, उस कारण से वो स्वयं आयतन, गुणों के कारण से आयतन होते हैं ना। तो सिद्ध भगवान का गुण वस्तु का शुद्ध स्वरूप शुद्धत्व वो आयतन है, वो उनका अंतरंग आयतन, अंतरंग आयतन को धारण करने से ही वे आत्मा, वह आत्मा भी आयतन कहलाई। ये आयतन का गहरा स्वरूप सामने आया डीप में, आयतन और अनायतन क्या है। जीव ही अनायतन कहलाता है, ये तो बाद में कहलाता है, किस कारण से वो पहला है, कारण पहला है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीन अंतरंग कारण हैं। इन अंतरंग कारणों के कारण से वह जीव अनायतन बना। अनायतन तो बाद में बना, पहला कारण रहा। तो कारण वो तीन है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये कारण बना। उसको जीव धारण करता है, कर रहा है या कर चुका है, उस कारण से आत्मा भी अनायतन कहलाया। समझ में आया ना? हाँ, ज्ञान दर्शन चारित्र ये सभी मार्ग रूप होते हैं मंजिल तक पहुंचाने के लिए, फिर शुद्ध होगा। मार्ग रूप आयतनों को हमें धारण करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन मार्ग रूप है, ज्ञान मार्ग रूप है, चारित्र मार्ग रूप है। ये मार्ग रूप आयतन को धारण करने के बाद आत्मा स्वयं शुद्ध आयतन बन जाएगा। एक शुद्ध आयतन और गुरु अशुद्ध आयतन, परंतु सम्यक आयतन, शरण के योग्य आयतन। अपेक्षा से दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों होने की अपेक्षा से ये आयतन है, लेकिन वो भी उन तीनों को कर्म नाश के लिए ही तो धारण कर रहे हैं। अब बाद में शुद्ध बनने वाले, बाद में शुद्ध बनने वाले, अभी तो शुद्ध बनने के साधन को प्राप्त कर लिया है, बाद में बनेंगे वो। अब ये रत्नत्रय क्या चीज है? कर्मों को नाश करने का उपाय। रत्नत्रय किस लिए? रत्नत्रय धारण कर लिया तो क्या हम शुद्ध हो गए? नहीं, शुद्ध बनना अब प्रारंभ हो गया है। अभी अभी 41 का समर हो गया है, समर हो गया, निर्जरा नहीं हुई है। शुद्ध का मतलब जितने भी कर्म आए हुए हैं अनादिकाल से आते रहे हैं, उनको रोकना और उनको बाहर निकालना, ये शुद्ध। बाहर निकालने से हम शुद्ध बनते हैं, रोकने से अशुद्ध ही रहते हैं। पर रोकना अनिवार्य है क्या? नहीं है। आने नहीं देना, ये पहला आवश्यक है। और फिर जो पहले आए थे उनको अलग करना, ये शुद्ध, शुद्ध की साधना है। रत्नत्रय संवर भी कराते हैं और निर्जरा भी। रत्नत्रय के माध्यम से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। और निर्जरा होते होते जिस दिन आप सभी कर्मों को निर्जरा कर डालेंगे, उस समय आत्मा स्वयं शुद्ध आयतन कहलाएगी। शुद्ध आयतन हमें तो देखो मंजिल को ध्यान में रख करके चलना है, तो शुद्धों की शरण ही प्रथम आवश्यक। शुद्धम शरणम गच्छामि, अंतिम हमारा वही मंजिल है। उसी लक्ष्य को पाने के लिए हमें साधु बनना है, हमें अरहंत बनना है, हमें सिद्ध बनना है। संवर और निर्जरा की, निर्जरा के स्थान है साधु परमिष्टि का स्थान, संवर निर्जरा का स्थान, अरहंत भगवान का स्थान संवर निर्जरा का स्थान। इसलिए ये मार्ग रूप है ये परमिष्टि। हाँ या नहीं? आपके लिए भी एक प्रश्न पूछते हैं जो उत्तर आपको मालूम है, आप दे सकते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। जब सीढ़ी चढ़ करके छत पर जाते हैं, छत पर गए तो सीढ़ी रहता है या छूट जाता है? ये उत्तर आपके पास है? सीढ़ी तो रहती है। कहाँ रहती है? छत के साथ रहती है। हाँ ठीक है। हाँ, नहीं उतरना चाहते क्योंकि उससे प्यार हो गया, उतरना नहीं चाहते आप। छत से बहुत प्यार है इसलिए आप नीचे आना ही नहीं चाहते। तो छत पर क्या खाएंगे पिएंगे? वहाँ चाहिए नहीं है। तो उसी प्रकार जो है ना, रत्नत्रय ये नसैनी के समान है। मार्ग रूप रत्नत्रय अलग होता है, मंजिल रूप सम्यक्तु, मंजिल रूप ज्ञान, मंजिल रूप चारित्र वो अलग होता है। एक मार्ग रूप भी है, एक मंजिल रूप भी है। मंजिल रूप जो कुछ भी है वहाँ पर भी देखो क्या सम्यक दर्शन नहीं है, है वही क्षायिक सम्यक दर्शन है जो चौथे गुण स्थान में प्रकट हो गया था वही है, लेकिन फर्क तो है उसमें। मार्ग रूप जो सम्यक तो था वह बंधन में था, परतंत्र था, अब वहाँ स्वतंत्रता की अनुभूति कर रहा है, अन्य कोई कर्म का उदय नहीं, अन्य कोई नो कर्म का भी संबंध नहीं, शरीर का संबंध नहीं, देह का संबंध नहीं, उस अवस्था में भी एक क्षायिक सम्यक है, लेकिन है तो, लेकिन मार्ग रूप सम्यक्तों का सद्भाव वहां है क्या? जो मार्ग रूप क्षायिक सम्यक्तों था वो परतंत्रता की अनुभूति करता था, वहां पर अब वह स्वतंत्रता की अनुभूति कर रहा है। ये संपूर्ण स्वतंत्रता ही तो मंजिल है, उस मंजिल में जाने के बाद हमारे पास सम्यक्तों भी रहेगा, ज्ञान भी रहेगा। मार्ग रूप ज्ञान अलग है, मंजिल रूप ज्ञान अलग है, ये फर्क करना। तो मार्ग रूप जो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ये सीढ़ी के समान, और मंजिल रूप जो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं वहां पर वो सीढ़ी के समान नहीं कहलाते, वहां पर चढ़ना समाप्त हो गया, वो तो छत रूप है, रहते हैं वहां पर भी लेकिन छत रूप। चारित्र को कैसे घटाएं? तो चारित्र को कैसे घटाएं? चारित्र किसको कहते हैं? अपने आत्मा में चरण करना चारित्र है, अपने आप में रहना चारित्र किसको बोलते हैं? आत्मा की अनुभूति को करते हुए आत्मा में रहना, तो आत्मा की अनुभूति करते हुए आत्मा में कभी रहते थे और कभी नहीं रहते थे, कभी रहते थे कभी नहीं रहते थे। तो ये जो अवस्था थी, ध्यान रहित अवस्था में हम चारित्र में आत्मा में नहीं रह सकते थे, और ध्यान अवस्था में आत्मा में रहते थे, लेकिन असली चारित्र कौन सा? एक व्यवहार चारित्र है, एक निश्चय चारित्र है। निश्चय चारित्र ही तो असली चारित्र है, व्यवहार चारित्र तो उसका साधक है, और उसको पाने के उपाय हम आत्मा में ही रहते थे, लेकिन ये बहुत समय तक रह नहीं सकता था, आत्मा में हम अधिक समय तक टिक नहीं सकते थे, इसलिए व्यवहार चारित्र का सहारा लेकर व्यवहार में रहो। तो व्यवहार चारित्र किस लिए दिया गया है? जब आप आत्मा में नहीं रह सकते उस समय यहां रहना, और यहां क्यों रहना? तो इसमें दो हेतु हैं, नीचे की ओर नहीं जाना इसलिए भी व्यवहार है, यानी असयम में, असयम की ओर भी नहीं जाना, और आत्मा में रह नहीं पा रहे हैं तो यहीं रहना व्यवहार में, ये व्यवहार चारित्र है। तो व्यवहार चारित्र वस्तुतः चारित्र नहीं है, वो असली चारित्र में पहुंचाने वाला चारित्र है, साधन है, रहते हैं। लेकिन शुद्ध बनोगे क्या? नहीं, ये पहला गुण बनना है तो मालूम मालूम तो कराएंगे हम, लेकिन कम से कम दो प्रतिमा तो लेना ही है, ये ठहराव कर दो प्रतिमा तो लेना ही है। इतनी तीव्र जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही है कि अब तो प्रैक्टिकल भी करना है अपने को। हाँ हाँ, सीढ़ी लेकर के ही रहना है अपने को। अभी दो प्रतिमाओं का स्वरूप भविष्य आगे समझाना है, अभी तो लोकमूर्ता में है। लोकमूर्ता का स्वरूप समझ में आया? गहराई से समझ में आया? लोकमूर्ता का जन्म किस किधर से होता है? लोकों में, लोक में होता है, लोक में होता है, और अनायतन से होता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जिनके पास हो वो अधर्म कहलाता है। अधर्म के माध्यम से बाह्य आत्माओं से वो होता है और वो अनायतन कहलाता है। अनायतन में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की प्रधानता होती है और आयतन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रधानता होती है। टाइम हो गया। तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जोशी